Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, संसार में तीन प्रकार के मत प्रचलित हैं। एक है मनमत, अर्थात व्यक्ति अपने मन के अनुसार कार्य करता है कि मुझे जो अच्छा लगा वो मैं करता हूँ, चाहे वो समाज के, परिवार के, दूसरों के हित में है या नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगना चाहिए। मान लीजिए शराब पीना मुझे अच्छा लगता है, मैं पी लेता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि समाज पे इसका क्या बुरा असर पड़ता है या परिवार में बच्चों पे इसका क्या बुरा असर पड़ता है। इसे कहा जाता है अपने मन के अनुसार चलना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमत अर्थात दूसरों की मत पे चलते हैं। कई बार ये अच्छी राय भी होती हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि दूसरों ने कह दिया, बस हम उसी को फॉलो करते हैं बिना ये सोचे कि उसमें सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन सर्वोच्च मत, जिसकी कल भी चर्चा हो रही थी, वो है श्रीमत अर्थात परमपिता परमात्मा की मत। शायद उनकी मत की ही हमें आवश्यकता थी, जिसके कारण हम उन्हें तलाश किया करते थे, क्योंकि उनकी मत से ही हमारा कल्याण हो सकता है, उनकी मत से ही हम मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी मत से ही हमारा जीवन सुख शांति और समृद्धि से संपन्न हो सकता है। शायद इसीलिए परमात्मा कहते हैं, कहीं बहुत सुंदर वाक्य लिखे हुए हैं जो मैं बार बार आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ, कि परमात्मा कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो वो होगा जो तू चाहता है। भाव पूरी तरह स्पष्ट है कि जो परमात्मा कह रहे हैं, यदि हम वो करते हैं, हमारा जीवन कल्याण से परिपूर्ण हो जाता है, हमारे जीवन में हमें वो सब चीज़ें प्राप्त होती हैं जो पाने की हम कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। लेकिन ये परमात्मत है क्या, श्रीमत है क्या, कहाँ से हमें प्राप्त हो, जिसकी हमें तलाश थी, उसकी आज चर्चा, उसकी आज जानकारी हम भ्राता जी से लेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भ्राता जी, बात तो बहुत सीधी सीधी और स्पष्ट है कि उनसे अच्छी मत तो हमें कोई दे ही नहीं सकता, लेकिन बात ये आती है कि उनसे मत ली कैसे जाए जिसकी हमें तलाश थी, और उस मत से हमें फिर क्या प्राप्ति होगी।
लंबे काल से हम शास्त्रों की मत पर भी चलते आए और गुरुओं की मत पर भी चलते आए, तो गुरु मत और शास्त्र मत भी प्रसिद्ध रही, और नो डाउट शास्त्रों ने भी बहुत कुछ अच्छा सिखाने का किया और गुरुओं ने भी अच्छी से अच्छी मत मनुष्य को दी। लेकिन दिनों दिन संसार का हाल बिगड़ता जा रहा है, मनुष्य परेशानियों में पड़ता जा रहा है, समस्याएं उग्र होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि अब से 50 साल पहले मनुष्य की स्थिति जो थी आज बहुत बिगड़ चुकी है। एक ओर हमें विकास भी दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर आंतरिक पतन बहुत ज्यादा हो गया है। तो गुरु मत भी हम सब ने देख ली, शास्त्र मत भी हम सब ने देख ली, अब समय आ गया है भगवान की मत पर चलने का। प्रश्न वही है कि भगवान की मत ऊपर से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? लोग तो कह देते हो सब जगह है, फिर उसकी मत कैसे मिलेगी? लेकिन नहीं, वो ब्रह्मलोक का वासी है। मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य को गति सदगति का मार्ग दिखाने के लिए, मनुष्य को मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताने के लिए और जीवन जीने की कला सिखाने के लिए, मनुष्य को पुनः देवत्व प्रदान करने के लिए इस धरा पर कलयुग के अंत में स्वयं भगवान आते हैं, जिसकी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। शिवरात्रि पर भी उसकी हमने बहुत अच्छी चर्चा की है। अब वो आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख के द्वारा और फिर किसी और माध्यम के द्वारा हम सभी को सच्ची राय दे रहे। उन्होंने हमें ये रियलाइज भी करा दिया कहाँ कहाँ गलती होती है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे परमत, परदर्शन, परचिंतन, उन्होंने हमें बता दिया इसे ये सब चीजें कैसे बुरी हैं, इनसे कैसे तुम्हारी मानसिक शक्तियों में पतन होता आया है, तुम वो कर ही नहीं पाए जो करना चाहिए था, तुम अपनी मंजिल को भूल गए, मंजिल को देखना भूल ही गए, दूसरों को देखने के चक्कर में, देखना चाहिए था तुम्हें स्वयं को, देखने लगे दूसरों को, अब समय है स्वयं को देखो। तो भगवान ने बहुत सारी मत इस समय आकर दी है, और ये बहुत ही गर्व की बात है, ईश्वरीय नशे की बात है कि स्वयं भगवान रोज आकर पढ़ाते हैं, उसने एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोल दिया है जिसका टीचर स्वयं वो परम शिक्षक ज्ञान का सागर है। वो हमें रोज अपनी मत दे रहे हैं, धीरे धीरे आत्माएं उसकी मत को फॉलो करती जा रही हैं और अपनी परफेक्शन की ओर बढ़ रही हैं, संपूर्ण प्योरिफिकेशन की ओर बढ़ रही हैं। तो इस समय आकर वो प्रैक्टिकल में, जैसे हम जानते हैं ना, दिखाया है शास्त्रों में, अर्जुन को भगवान ने सम्मुख ज्ञान दिया, मत दी, ये करो ये न करो। भगवान इस समय स्वयं आकर पुनः श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, उनसे सम्मुख हम वो मत प्राप्त कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो ये कहाँ और कैसे संभव है व्रता जी? कि चलिए अब ये बात रही साफ कि परमात्मा मत दे रहे हैं, कहाँ और कैसे?
मैंने ये बात स्पष्ट कर दी कि उन्होंने आकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है, एक गॉडली यूनिवर्सिटी खोली है, इसको हम रुद्र यज्ञ भी कहते हैं, जिसकी शाखाएं सारे संसार में
ब्रह्मा कुमारी
इसकी ब्रांच जानी जाती हैं। वहां जाकर आप ईश्वरीय मत प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं मनुष्य ने क्या बताया, भगवान क्या बता रहे हैं, उसका कंट्रास्ट कर सकते हैं, अपनी बुद्धि से उसका विश्लेषण कर सकते हैं और देख सकते हैं उस पर चलकर हमारा जीवन सुख शांति से भरपूर होगा, हमारे कदम सफलता की ओर चलेंगे, मंजिल हमें साफ दिखाई देने लगेगी, हमें पता चल जाएगा हम कहां से आए थे, क्या करने लगे, अब क्या करना है, उसकी संपूर्ण श्रीमत उसने दे दी है। इसलिए उसकी मत को श्रीमत कहा जाता है। उसमें आज तक की सभी अच्छी मतें जो हमारे पूर्वजों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने हमें दी थी, उनसे भी कुछ आगे बढ़कर हमें प्राप्त हो जाता है।
बिल्कुल, तो भ्रता जी ये जो अब हमें मत प्राप्त होगा, कई बार मन में एक, चूंकि कई जगहों से मत मिलते रहे हैं, तो मन में एक थोड़ा सा फिर भी रहता है या शंका बना रहता है कि भाई ये वाला मत हम कैसे माने कि परमात्मा का ही मत है, कोई मनुष्य भी तो ये मत दे सकता है, क्योंकि जैसे अनेक आचार्यों ने भी मत दिए और तत्कालीन समाज में उनका बड़ा प्रभाव था, तो व्यक्ति कैसे इस चीज को समझे कि सचमुच ये श्रीमत ही है?
नो डाउट, अनेक गुरु भी अच्छे अच्छे हुए जिन्होंने मनुष्यों को अच्छी राह दिखाई, परंतु परमात्मा दिखाते हैं राह प्योरिफिकेशन की, आत्मा को पावन बनाने की, मनुष्य को फिर से देवता बनाने की, ये उसकी मत का प्रत्यक्ष प्रमाण है, सत्य स्वरूप है, जो कोई मनुष्य गुरु या आचार्य नहीं दिखा पाया था, आत्मा का प्योरिफिकेशन और मनुष्य को देवत्व की ओर ले चलना, उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति की एक सरल राह दिखा देना। तो बस यही है, जहां आप देखें प्योरिटी का मार्ग दिखाया जा रहा है, जहां आप देखें परमात्म मिलन का मार्ग दिखाया जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस पर थोड़ा सा चल कर देख लें, अगर आपको महसूस होने लगे कि मंजिल की ओर कदम बढ़ रहे हैं तो निश्चित हो जाएगा कि मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। तो परमात्म मत सचमुच स्वयं ही उसका प्रूफ दे देती है, उस पर थोड़ा सा चल कर देखें, उसे लेकर देखें, जैसे मैंने कहा गुरुओं की मत भी लेकर देख ली, आचार्य और महान पुरुषों की मत भी आई, सबने मनुष्य को कुछ ना कुछ अच्छा सिखाया, भगवान की मत अवश्य मनुष्यों की मत से या गुरुओं की मत से कुछ अलग होगी, ये तो पहले से ही स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई सोचे कि भगवान भी वही मत दे रहा होगा जो हमारे गुरुओं ने दी, जो महान पुरुषों ने दी, ये मानना तो गलत होगा। अगर इसी मत से मनुष्य का कल्याण हो गया होता तो भगवान को आकर श्रीमत देने की आवश्यकता न पड़ती।
बिल्कुल, मतलब आके हमें देखने की आवश्यकता होगी और थोड़े समय चल के देखने की भी आवश्यकता होगी। लंबे समय से व्रता जी आप विद्यालय से जुड़े हुए हैं, लाखों भाई बहने जुड़े हुए हैं, कैसी और क्या अनुभूति हो रही है अब तक? हम जैसे शास्त्रों की मत की बात आप कह रहे थे कि गुरुओं की मत पे हम चल रहे थे या शास्त्रों की मत पे चल रहे थे, अब लंबे समय से हम एक ईश्वर की मत पे चल रहे हैं जो आप कह रहे हैं, क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है?
बिल्कुल, हमने तो देखा, देखिए पहली चीज तो थी कि शास्त्रों में ज्ञान तो था लेकिन मनुष्य को एक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई, तुम कौन हो, कहां से आए हो, जैसे कि उलझा हुआ दर्शन मिलता रहा, आचार्य लोग डिबेट करते रहे, गुरुओं की मतों में भेद रहता आया, इसने कुछ कहा किसने कुछ कहा, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रही, इसलिए सत्य की खोज बराबर थी। भगवान की मत जब से मिली सत्य की खोज समाप्त हो गई, लाखों करोड़ों लोगों ने उन अनुभवों के आधार से ये रियलाइज कर लिया अब सत्य को खोजने की जरूरत नहीं, सत्य मिल गया, ये बहुत बड़ा प्रूफ था परमात्म मत को प्राप्त करने का। परमात्म मत का दूसरा स्वरूप अनुभव में आया, एक सहज मार्ग मिला। मुक्ति क्या है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान कहाँ है वो कैसे मिलेगा, ये खोज और ये भटकन समाप्त हो गई, बस ये है। तो एक सरल मार्ग, एक सरल दर्शन प्राप्त हो गया जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हुई, तृप्त हुई। ये हम सब देख रहे थे, हजारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे थे कि बहुत सारी बातें शास्त्रों की गुरुओं की सुनकर भी मन कहीं ना कहीं प्यासा था, कुछ और मिले, कुछ और ज्ञान मिले, कुछ और राह मिले, और इस मार्ग पर आने पर एक बस विराम लग गया, मिल गया। ये बहुत बड़ी चीज हो गई। अगली चीज कि इस मार्ग पे चलने से, ईश्वरीय मत मिलने से आत्मा का प्योरिफिकेशन होने लगा, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट सब कुछ बढ़ने लगे, विचार शुद्ध होने लगे। और जो ब्रह्मचर्य का मार्ग बहुत कठिन था, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हमारे भारत में बहुत सारे युवक और बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, वो इसके महत्व को जानते हैं परंतु उनकी वासनाएं इसको करने नहीं देती, वो कठिन महसूस करते हैं। हम सब ने ईश्वरीय मत पर आने से महसूस किया कि प्योरिटी का मार्ग सरल हो गया, इट बिकेम एन एंजॉयमेंट फॉर अस। ये बहुत बड़ी अनुभूति थी। और फाइनल बात मैं कहूँगा कि हमारे कदम अपनी परफेक्शन की ओर चलने लगे, मन और ये जीवन ईश्वरीय अनुभूतियों से भरपूर हो गया। मैं ये कहूँगा कि हम श्रेष्ठ अनुभवों के खजानों की खान बन गए, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। मैं तो कहूँगा कि जो जन्म जन्म पाने की अभिलाषा थी वो सब पूर्ण हो गई। तो श्रीमत पर चलने से ये सब कुछ होता है। 50 साल में मैंने भी देखा, दिनों दिन कदम आगे बढ़ते रहे, ये नहीं हुआ कि पीछे हट गए, ये नहीं हुआ कि आत्मसंतोष की बजाय आत्मग्लानी होने लगी, ये भी नहीं हुआ कि जो कार्य सरल थे वो कठिन लगने लगे, कठिनाई सरलता में बदलती गई।
आपके अनुभव से ऐसा प्रतीत हो रहा है व्रता जी कि सचमुच आपने उस ईश्वरीय सत्ता को बहुत गहराई से, समीपता से अनुभव किया है। लगातार हमारी चर्चा भी होती रही है, लेकिन एक प्रश्न आता है व्रता जी, यदि ईश्वर आकर के अपना मत दे रहे हैं तो ईश्वर को तो सभी मानते हैं, अलग अलग नामों से भले मानते हैं, तो सभी इस ईश्वरीय मत को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं?
हर एक की अपनी अपनी मत होती है ना, जो जिस धर्म से जुड़ा है, जिसके जो धर्म ग्रंथ हैं या जो जिन महान पुरुषों से जुड़े हुए, उन्होंने उनकी मत को फाइनल मत समझ लिया ना, परफेक्ट मत। लेकिन गुंजाइश रहती है, तभी भगवान को आना पड़ता है। वो जो सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता में तुलसीदास ने तो उसको बहुत बढ़ाया, वो सत्य मत देकर ही तो सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि एक बार ईश्वरीय मत लेकर भी देखें, डिफरेंस नहीं लेकिन उससे आगे बढ़ने का अनुभव प्राप्त होगा कि जो मत हमारे पास अब तक थी, ओके मान लो दैट वाज वेरी गुड ट्रू, लेकिन हमें उससे आगे बढ़ने का अनुभव होगा, परमात्मा के समीप जाने का अनुभव होगा, ऐसा लगेगा वो हमारा अपना है। ये हमारी बहुत गुड फीलिंग है कि भगवान हमारे लिए भगवान नहीं रह गया, जैसे वो हमारा अपना हो गया, बहुत समीपता हो गई, हम उसके प्यार में पलने लगे, उसकी पालना में पलने लगे, तो ये उसकी मत पर चलने का सुंदर परिणाम मिला।
बिल्कुल व्रता जी, वही बात रही कि चलिए वो लोग भी इस चीज को जानने और समझने की कोशिश करें। एक हर एक धर्म में शायद एक मान्यता सी थी, हिंदू धर्म हो या अन्य धर्मों में, कि जब परमात्मा आएंगे तो सबको विदित हो जाएगा कि हाँ वो आए हैं, चाहे वो बादलों की गर्जना होगी या बरसात होगी या कुछ भी होगा, मतलब अलग अलग रूपों में इसका वर्णन है। तो अब परमात्मा इतने समय से, जैसे ब्रह्मा कुमारीज कहती हैं, आके कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी प्रतीति क्यों नहीं हो रही है, इतना गुप्त क्यों है ये?
हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक धर्म में तो ये भी है कि ईस्ट से ज्योति प्रकट होती हुई दिखाई देगी और सबको आभास हो जाएगा। निश्चित रूप से परमात्मा को पहले अपना कार्य गुप्त रूप से ही करना होता है, क्योंकि उसको मनुष्य को देवता बनाना है, उसको एक स्वर्णिम युग की रचना करनी है, तो उसके कार्य में भी अवरोध तो पैदा होते ही हैं, क्योंकि यहाँ के लोग, अनेक लोग उसके उस कार्य को, उसकी कार्य पद्धति को स्वीकार नहीं करते, एकदम अलौकिकता हो जाती है ना, लोग अपवित्रता के मार्ग पे चलते हैं, परमात्मा का आदेश होता है पवित्र बनने का, तो एक विरोध की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए बहुत प्रचार प्रसार होते हुए भी अनेक लोग उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते, पर ये सत्य है। अभी वो समय आ रहा है तेजी से, कलयुग के अंत से पहले ही सभी लोगों को ये पता लग जाएगा कि वो महाज्योति, वो निराकार परमात्मा जो हम सबका मालिक है, परम पिता है, वो इस धरा पर आकर अपना दिव्य कार्य करते रहे हैं और एक बार सब उससे जुड़ जाएंगे।
तो ब्रदर जी, गुप्त रूप से कार्य क्यों करते हैं परमात्मा? आके यदि जैसे एक प्रख्यात से हो जाते कि हाँ मैं आ गया हूँ, तुम सबका मैं पिता हूँ, क्या ये स्वरूप होता तो सारा कार्य सहज नहीं हो जाता?
देखिए, उसको पहचानने वाली बहुत कम आत्माएं इस सृष्टि पर होती हैं। भक्ति में भी कोई सच्चे मन से उसे प्यार करता है, कोई दिखावे की भक्ति करता है। जिन्होंने लंबा काल उसकी सच्चे दिल से भक्ति की है, इबादत की है, बहुत अच्छी प्योरिटी जिनके पास रही है, जो इस सृष्टि की महान आत्माएं हैं, पहले वो उसे पहचानती हैं। अगर वो प्रत्यक्ष हो भी जाए तो भी सब लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया ना, कौरवों की सभा में उसने अपना विश्व रूप दिखा दिया है, लेकिन देख लिया है सबने, इवन धृतराष्ट्र की भी आंखें थोड़ी देर के लिए खुल गई हैं, भीष्म पितामह ने भी देख लिया, द्रोणाचार्य ने भी और सारे कौरवों ने, लेकिन माना किसी ने भी नहीं। तो परमात्मा अगर अपना वो संपूर्ण स्वरूप दिखा भी दे तो भी उसको मानने वाले बहुत पवित्र आत्माएं थोड़ी होती है, यही विधि विधान है। और धीरे धीरे जब उसका कार्य प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसके कार्य के माध्यम से लोग उसको पहचानने लगते हैं।
मतलब ये बात रही कि व्यक्ति शायद अपने माया जाल में इतना उलझा रहता है कि भगवान को भी शायद उस रूप में स्वीकार नहीं कर पाता, अपने अहम के कारण शायद। तो ब्रदर जी, शायद गीता की बात मुझे याद आ रही है कि गीता में ये कहा गया है कि जब मैं आता हूँ तो एक साधारण वृद्ध तन में या गुप्त रूप में आता हूँ, तो शायद ये वाली बात आपकी बात से ज्यादा जंच रही है।
बिल्कुल, वो गुप्त रूप से आता है, गुप्त रूप से अपना कार्य करता है। और देखिए, कोई भी महान कार्य पहले एक छोटे लेवल से ही प्रारंभ होता है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना देख लीजिए, बौद्ध धर्म की स्थापना देख लीजिए, इस्लामिज्म की स्थापना देख लीजिए, पहले संघर्ष भी करना पड़ा, लोगों को विरोध भी सहना पड़ा, छोटे स्केल से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जब सत्य उजागर हुआ तो लोगों ने उसे स्वीकार किया। यही कार्य विधि सभी धर्म पिताओं की, महान आत्माओं की और परम पिता की भी है कि वो अपना पहले कार्य छोटे स्केल से ही शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनके कार्यों के द्वारा उनको पहचाना जाता है।
लेकिन ब्रदर जी, तब ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ग्लानी नहीं होगी, मतलब दुख नहीं होगा कि परमात्मा आए सृष्टि पे, कार्य किया जिसकी हम पूजा करते रहे, अर्चना करते रहे, आराधना करते रहे, सजदे करते रहे, वो आए भी थे, वो कार्य भी किए और हमें पता नहीं चला, तो ये वाली जो फीलिंग है बहुत तकलीफ नहीं देगी फिर लोगों को?
तब लोग बहुत खुश होंगे कि आखिरकार हमने भी देख तो लिया, हमें भी मिल तो गया, वो अपने भाग्य को बहुत सराहेंगे।
लेकिन देर से मिला।
लेकिन कुछ लोग जरूर ये सोचेंगे पहले मिल गया होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हम तो ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, भगवान ने आदेश दिया है मेरे कोई भी बच्चा मेरे संदेश से वंचित न रह जाए, टीवी चैनल्स के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, और हजारों प्रोग्राम्स हमारे होते रहते हैं साल में, हजारों, क्योंकि बहुत सारे सेवा केंद्र हैं, हर सेवा केंद्र बहुत प्रोग्राम करता है, लेकिन हमें कोई दोष नहीं देगा, हम तो सबको बता रहे हैं, मनुष्य स्वयं सोचेगा कि सुना तो हमने भी था, पर्चा तो हमारे घर में भी दिया गया था, उसमें साफ लिखा था भगवान आकर अपना दिव्य कार्य कर रहा है, लेकिन हम मोह माया में इतने व्यस्त रहे कि हमने सोचा ठीक है आया होगा, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना काम करना है। तो मनुष्य तब बस इतना ही खुश होगा कि आखिरकार हमें भी उसका संदेश मिला, हम भी उससे जुड़ गए और ज्यादा नहीं तो थोड़ी ही प्राप्ति सही हो गई।
प्रताप जी, ऐसे पर्चे शायद बहुत मिलते हैं लोगों को, इसीलिए शायद वो कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत सारे पर्चों में से ये भी एक पर्चा है। इसीलिए मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आता है कि परमात्मा जब सर्वशक्तिवान है और सभी उनके बच्चे हैं, तो क्या एक बार, चलिए ब्रह्मा कुमारी ये कार्य कर रही हैं कि सभी तक ये संदेश पहुंचे और जाने लोग कि भगवान आ गए हैं, यदि परमात्मा अपनी तरफ से सबको एक बार साक्षात्कार करा दे, सभी धर्म की आत्माओं को, कि मैं आ गया हूँ, यहाँ आ गया हूँ माउंट आबू में, तुम सब आ जाओ, तो कितना अच्छा रहेगा।
बिल्कुल, आपका संदेश हम उन तक पहुंचा देते हैं और वो जरूर इस पे विचार करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए।
जी जी, क्योंकि व्रता जी एक विशेष बात लगता है, क्योंकि व्यक्ति तब तक किसी मत का पालन नहीं करता जब तक उसे अनुभूति नहीं हो जाती, और जब तक ये अनुभूति नहीं होगी कि सचमुच परमात्मा यहाँ है तब तक तो वो पालन करेंगे ही नहीं। इसलिए विशेष करके मैं बात कह रहा,
परमात्मा की कार्य करने की विधि दिव्य और अलौकिक है, ये उसके ही अपने माँ बाप है, इसलिए उसको कैसे सबको संदेश दिलवाना है और समीप लाना है ये तो उसके पास है प्लानिंग, लेकिन आपका संदेश हम उन तक अवश्य पहुंचा देंगे कि सब धर्म की आत्माएं इस तरह प्यासी हैं और आपसे इस तरह मिलन चाहती हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी, मुझे लगता है कि ये संदेश जरूर स्वीकार करेंगे वो और जरूर जल्दी से सभी धर्म की आत्माएं आएंगे। कुछ हमारे पास पत्र आए हैं प्रता जी, रोहिणी पेंढारकर जी अमरावती से लिख रही हैं और हमारी चर्चा जैसी हो रही है वैसा ही इन्होंने प्रश्न भेजा है, दिव्य दृष्टि का आभास किनको होगा? ये बड़ा ही गहन और महीन प्रश्न मुझे लगता है।
हाँ, देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न है
जी।
दिव्य प्रश्न है, एक है दिव्य बुद्धि, दूसरी है दिव्य दृष्टि। आज मनुष्य सबको दृष्टि तो मिली है लेकिन इसको दिव्य दृष्टि नहीं कहा जाता। दिव्य दृष्टि के द्वारा हम उन चीजों को देखने में समर्थ होते हैं जो इन आंखों से नहीं दिखती, जो अदृश्य है, आत्मा, परमात्मा, सतयुगी संसार, ब्रह्मलोक, मुक्ति का धाम, जो ये अदृश्य चीजें हैं, सूक्ष्म लोक, परमात्मा का स्वरूप, संपूर्ण उसकी कार्य विधि, उससे मिलन, उससे समीपता, ये सबको नहीं प्राप्त हो सकती। बहुत भाग्यवान आत्माएं जिन्होंने भगवान से भक्ति में इस तरह की मांग की है और जिन्होंने अपने चित्त को बहुत पवित्र किया है और अपनी बुद्धि को इस चीज के लिए योग्य बनाया है, सरल चित्त किया है, पवित्रता, सरलता और कोई डिवाइन संस्कार जिन्होंने बनाए हैं, उनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और बहुतों को प्राप्त होने वाली है जिन्होंने ऐसी स्थिति बना ली है।
तो भ्राता जी, ये परमात्मा देन है या व्यक्ति अपने पुरुषार्थ मेहनत से इसे प्राप्त कर
देखिये पहले मनुष्य को अपने को योग्य बनाना होता है और जब हम अपने को योग्य बना देते हैं तब परमात्मा हमें वो गिफ्ट दे देता है।
जी जी जी, चलिए आज के सुंदर प्रकाश के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी। सच्ची बड़ी बड़ा ही अच्छा लगता है जब उस परमात्मा की बातें होती हैं और आप नए नए रहस्य उद्घाटन हमारे दर्शकों के सामने करते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, चर्चा हमारी शुरू हुई थी श्रीमत अर्थात परमात्मा की मत से, और परमात्मा जिसे मत दें उसका जीवन कितना श्रेष्ठ होगा ये तो हम समझ ही सकते हैं, और वैसे वो मत दे रहे हैं जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि लाखों लोग उनकी मत पे चल के अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं, महान बना रहे हैं, पवित्रता से सजा रहे हैं और एक नए दैव युग की स्थापना कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। वास्तव में कई बार ये होता है कि हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते और यहाँ आवश्यक हो जाता है समीप आकर देखने का। कई बार हम दूर से देखते रहते हैं और जैसे कल भी हमारी चर्चा हो रही थी कि कोई कह देता है कि अरे छोड़ो, कोई चीज नहीं है, ऐसी ही चीज है, हम मान लेते हैं और दूर ही रहते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जब तक हम किसी चीज को समीप आकर नहीं देखेंगे तब तक उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। और ब्रह्मा कुमारियां तो लगातार कहती हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम तो ढिंढोरा पीट ही रहे हैं कि परमात्मा आ गए हैं और अपना कर्तव्य कर रहे हैं और सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, आप भी अपना जन्म सिद्ध अधिकार आकर लें। तो ये ढिंढोरा लगातार पीटा जा रहा है, बताया जा रहा है, जरूर कोई बात होगी तब तो ये बात कही जा रही है, हमें जरूर एक बार समीप आकर देखना जरूर चाहिए। कई बार मेरे जहन में एक प्रश्न उठता रहता है मित्रों, उसी से अंत करना चाहूंगा कि मैं बार बार आजमाता हूँ कि परमात्मा है या नहीं है, लेकिन उस परमात्मा ने एक बार भी मुझसे सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ या नहीं हूँ। देखिए कितनी गहरी बात है ना, मैं कितना आजमाता रहता हूँ उसे, आजमाएं भले लेकिन एक सही दिशा में आजमाएं जिससे मेरा जीवन भी सार्थक हो, श्रेष्ठ हो, पवित्रता से परिपूर्ण हो। गहरा प्रश्न है मित्रों, विचार जरूर कीजिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।